श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय पांचवा श्लोक संख्या 14।
तशोच्यान विदो अनुशोचे हरे कथायां विमुखान घेन क्षिणोति देवो अनिमिषस्तु येषां आयुर्वृथावाद गति स्मृतीनां तच्छोषश्च शोचान विदो अनुशोचे हरे कथायां विमुखान घेन क्षिणोति देवो अनिमिषस्तु येषा आयुर्वृथा वादगति स्मृतीनां।
हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत यानी भगवद गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्यों तथा भगवान के बीच तीन प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी है, वे ईश्वर के अस्तित्व के विमुख रहते हैं, या वे ईश्वर के अस्तित्व को औपचारिक आपूर्तिकर्ता के पद पर मानते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सतोगुणी होते हैं। ये दूसरी श्रेणी के लोग परब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य रूप में नहीं। उनसे भी ऊपर है वे जो शुद्ध भक्त है। वे भौतिक सतोगुण के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, यश, गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा का सुनना कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ है, अर्थात भगवान की भक्ति है, जो जीवन का असली ध्येय है। क्योंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतएव उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र हैं। दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोगों तथा विभिन्न वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं।
तशोच शोचान अविदानुशोचे हरे कथायां विमुखान अनघेन क्षिणोति देवो अनिमिषस्तु येषां आयुर्वृथावाद गतिस्मृतीनां।
हे हे वणि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं। वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जाती है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सचिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रभु थोड़ा ऐसे आ जाओ, सामने आ जाओ, नहीं थोड़ा और आइए। भगवान नहीं है पीछे आपके, फिर ऐसे करेंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या वो तो सुन ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे भगवान के भक्तों का एक जो विशेष गुण है, कारुण्य। ऐसे है, हर रोज मंगल आरती में हम गाते हैं, संसार का वाला ललित लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्व कारुण्य। तो करुणा जो है, उस करुणा के बल पर ही हम हमारे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वे बताते हैं कि मुझे उन व्यक्तियों पे तरस आता है जो कर्मकांड में लगे हुए हैं। कर्मकांड के ऊपर है को जो तपस्या में लगे रहते हैं, अष्टांग योग के द्वारा अलग अलग आसनों और प्राण को आयाम देके, प्राणों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण करके, सारे इंद्रियों को जो नियंत्रित करते हैं, बोले उनके ऊपर भी मुझे तरस आता है। उनसे बढ़कर रहते ज्ञानी जो सतोगुण में रहते हैं, ज्ञान की अवस्था को प्राप्त भी कर लेते हैं, भगवत कथा का श्रवण भी कर लेते हैं, लेकिन भगवत कथा ये उनका साध्य नहीं रहता। केवल सतोगुण में रहने के कारण वे एक साधन के रूप में उसको स्वीकार लेते हैं, लेकिन कथा उनका साध्य नहीं रहता। क्योंकि जैसे भगवान का शुद्ध भक्त रहता है, जो शुद्ध सतोगुण में रहता है, उसका साध्य क्या रहता है? उसका साधन भी हरि कथा रहती है और साध्य भी हरि कथा रहती है। क्योंकि जैसे पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भगवान और उनकी कथा, उनके लीला गुण, ये सब अभिन्न है। तो शुद्ध भक्तों को उन व्यक्तियों पर तरस आता है जो भगवान की कथा में रुचि नहीं रखते हैं, जो भगवान के विमुख होते हैं। जैसे यहाँ पे बताते हैं कि हरेर कथायाम विमुखा अघेन, विमुखान अघेन। कौन विमुख रहता है हरि कथा से? कौन व्यक्ति है जो भगवान की कथा सुनना नहीं चाहता है? भक्त तो सुनना चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य वही रहता है। यहां पे बताते हैं अनघेन जो व्यक्ति पापी रहता है वो व्यक्ति हरि कथा नहीं सुन सकता, उसको हरि कथा में रुचि आती ही नहीं है। तो हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, अगर इसका हमें देखना है, अगर उसकी हमें परीक्षा करनी है, तो हमें हमारे व्यवहारों पे निरीक्षण हमें करना चाहिए, थोड़ा अपने जीवन पे अवलोकन करना चाहिए कि हरि कथा में हमें कितनी रुचि आ रही है। क्योंकि जो पापी व्यक्ति है वो हरि कथा में रुचि नहीं रखता। जैसे वहां से कृष्ण पुस्तक लाएंगे, कृष्ण 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 पुस्तक, या रैक में है ना, कृष्णा बुक लाइए, कृष्णा कोई भी हिंदी इंग्लिश जो मिले वो, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, हाँ कृष्णा है उसमें, घुमाइए। कि जो व्यक्ति दूसरा है ना, खुला है ना इंग्लिश वाला, कि भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणः ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम अनन्य भाग। कि वही व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है जो अपने पाप प्रवृत्ति से मुक्त है। क्योंकि भगवान की जो कथा है वो सबको आकर्षित कर लेती है अपने प्रति। जैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पहले अध्याय में चौथा श्लोक है, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं निवृत्त तर्षेरुपगीयमानात् भवौषधिश्रोत्रमणोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्जेत बिना पशुघ्नात्। जो पशुघ्न है वो व्यक्ति हरि कथा को नहीं सुनता। अभी पशुघ्न का अर्थ क्या कहते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, वो व्यक्ति जो अपना खुद की हत्या कर लेता है। जैसे आत्महत्या करते हैं ना लोग, आत्महत्या से शरीर को नष्ट कर लेते हैं, लेकिन हरि कथा न सुनने से आत्मा नष्ट हो जाती है, आत्मा की हत्या हो जाती
है।
हाँ, क्योंकि यहां कहते हैं कि निवृत्त तरशे रूपगी यमाना, जब भगवान की कथा को हम सुनते हैं तो निवृत्त तरश मन में अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ये भगवत कथा कैसी है, भव औषधि, इस भवरोग के लिए अगर कोई औषधि है तो कहा जाता है कि वो हरि कथा है। जैसे महाराज कुलशेखर अपने एक श्लोक में कहते हैं कि इदं शरीरं परिणाम पेशलं पतत्यवशं शतसंधि जर्जरम निरामयं कृष्ण रसायनं पिब। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है ये कैसा है, सैकड़ों अस्थियों की संधि है, सैकड़ों हड्डियां है जो एक दूसरे से बंधी पड़ी है, और अंत में वो जर्जर होने वाली है और व्यक्ति मृत्यु के समय इस शरीर को छोड़ने वाला है, और एक ना एक दिन ये तो गिरने ही वाला है। तो बोलते हैं किम औषधम पुष्यत ति दृढ़मते किम औषधम पृच्छति दुर्मूढ़मते। हे मूर्ख, तुम किस औषध की बात कर रहे हो? निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, अगर पीना ही है तो निरामय, जिसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, जो सारे दुखों से आपको मुक्त करने वाला है, ऐसे कृष्ण रसायन का पान करो। क्योंकि ये कृष्ण रसायन, ये जो हरि कथा है, इससे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति इसको ग्रहण कर लेता है, और वो भी कहा भक्तों के संग में, तो जैसे कपिल मुनि अपनी माता को बताते हैं कि सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्करण रसायन कथा तज्जोषणात् अश्वपवर्गवत्मनी रतिर श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमेश्वरी। हृत कर्ण रसायन, कर्ण के द्वारा हृदय में प्रवेश करने वाला ये जो कृष्ण रसायन है, अगर इसका कोई पान कर लेता है तो भव औषधि, भव रोग की औषधि उसको प्राप्त हो जाती। और क्षत्र मनोभिरामात, और मन उसमें पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और जब व्यक्ति का मन भगवत कथा में मुग्ध हो जाए तो इस भौतिक जगत की विपदाएं, दुख, इन सब का उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, नैवो द्विजे दुरतर वैतरण्यास त्वद वीर्य गायन महा अमृत मग्न चेतः शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ। वे यहाँ पे कहते हैं कि नैवो द्विजे परतर दुरतर वैतरन्यास, भगवान इस विरजा नदी को पार करना मेरे लिए इतना कठिन नहीं है, और ना ही मैं उसके लिए प्रयास करना चाहता। त्वद वीर्य गायन महाअमृत मग्न चेतः, तुम्हारे गुणों का गुणगान करने में मेरा मन लगने के कारण शोचेत, तो मुझे कुछ दुख नहीं है इस भौतिक जगत का। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूं किनके बारे में, विमुख चेतसा इंद्रियार्थ, जो आपको विमुख होके इंद्रियों में अपनी चेतनाएं लगा के बैठे हैं, माया भ्रम उद्भाय तो विमूढ़ान, ऐसे माया से भ्रमित हुए जो मूर्ख है, अति मूर्ख लोग हैं, उनके लिए मैं सोचता हूँ, उनके ऊपर मुझे तरस आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विदुर जी, महात्मा विदुर, और महाजन प्रहलाद महाराज, इनके हृदय की अवस्था जो है वो एक जैसी है। इनके हृदय में जीवों के प्रति करुणा है, दया है, और ऐसे साधुओं के अगर हम दया पात्र बनते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जन्म सफल हो जाता है। साधु संग साधु सरंग सर्व साध शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर ऐसे साधुओं का हमें केवल एक क्षण के लिए भी, या क्षण का एक दशांश भाग जो है, उतना भी अगर किसी प्रामाणिक और एक योग्य साधु का अगर हमें संग प्राप्त हो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति के अनुसार मनुष्य के अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि तमोगुणी है, रजोगुणी है और सतोगुणी। तमोगुणी व्यक्ति कौन है? वो जो केवल इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ता है। जैसे
हम कई बार देखते हैं कि खेतों में जब जानवर घुस जाता है तो क्या करते हैं, हम लाठी मार मार के उसको बाहर भगा देते हैं, लेकिन फिर वापस वही क्या कर लेता है, कुछ समय के पश्चात वो जानवर फिर से खेत में घुस जाता है। वो भूल जाता है कि इतनी उसकी प्रताड़ना हो रही है, इतना उसको लाठी से मारा जा रहा है, फिर भी उसको कुछ लगता नहीं, वो वापस उसी में लग जाता है। तो उसी प्रकार से जो तमोगुणी व्यक्ति है उसे मालूम पड़ता है कि इस इंद्रियों के द्वारा उपभोगने की जो चीजें हैं वो उसको सुख दे रही है, लेकिन ये सुख दुख का कारण है यह वो भूल जाता है। जैसे ऊंट रहता है, ऊंट को देखा आपने कभी खाते हुए, क्या खाता है ऊंट?
झाड़ी खाता है,
जो कांटे की झाड़ी रहती है, बबूल का वगैरह जो पेड़ रहता है, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, कैक्टस, इसको खाता है,
कांटा वाली चीज,
हाँ कांटा वाला, और उसको उसमें आनंद आता है, लेकिन वो स्वाद कौन सा ले रहा होता है, खुद का खून ही खा रहा था, क्योंकि वो कांटों के कारण उसकी जीवा के ऊपर छाले आ जाते हैं और उसमें उसमें रक्त बाहर निकलने लगता है, उसी रक्त का आस्वादन करके वो उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा कुछ खा रहा है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति रहता है उसको असली सुख यानी इंद्रियों का भोग ही लगता है, और ऐसा व्यक्ति इंद्रियों के भोगों में जो निरत रहता है वो उन भोगों को प्राप्त करने के लिए कई बार पापोमय कार्य में लग जाता है, और उसको कुछ ये नहीं लगता, गलत नहीं लगता, वो उसको लगता है कि मेरे इंद्रियों के लिए यह आवश्यक है, ये मेरे लिए नैसर्गिक है और मैं कर सकता हूं, लेकिन ये योग्य बात नहीं है। जो शास्त्रों को जानता है, जो सभ्य नागरिक है, वो इससे बचना चाहता है। फिर जो व्यक्ति केवल तमोगुणी प्राणी मात्रों के समान, जानवरों के समान, पशुओं के समान अपना जीवन व्यापन कर लेता है, ऐसा व्यक्ति भगवत कथा में रुचि नहीं रखता। फिर आगे जाके है रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति थोड़ा बहुत तमोगुणी से ऊपर उठता है, उसमें वो कथा सुन भी लेता है, लेकिन कथा सुनने के लिए उसके पीछे उसका ध्येय रहता है कि उसकी जो फलश्रुति है, ये कथा सुनूंगा मैं तो किसी अच्छी इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त कर पाऊंगा, अच्छे भोगों को प्राप्त करने के लिए वो हरि की कथा सुन लेता है। सुनता तो है, तमोगुणी व्यक्ति से थोड़ा अच्छा है क्योंकि ये सुनना चाहता है भगवान के बारे में, लेकिन साथ ही साथ इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहता है। तो ऐसा रजोगुणी व्यक्ति भी उस हरि कथा का उचित रूप से आस्वादन नहीं कर पाता, सुन लेता है। जैसे
मिश्र हो गया।
जैसे कोई एक पतेला है जिसमें बहुत सारे छिद्र है, और उसमें से अगर आप पानी लेके जा रहे हो तो पानी रहेगा उसमें, गिर जाएगा। तो उसी प्रकार से भौतिक कामनाएं रखे भगवत कथा को सुनने का प्रयास करते हैं तो हृदय की उतनी शुद्धता नहीं होती है जितनी की कथा सुनने के बाद होनी चाहिए। इसलिए उनसे बढ़कर जो व्यक्ति रहती है वो रहती है ज्ञानी। वो जान लेती है कि ये भौतिक सुख जो है ये मुझे दुख प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इन भौतिक सुखों के मुझे पीछे नहीं दौड़ना है। अगर मुझे कुछ करना है, अगर मुझे कुछ अब ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना है तो हरि कथा सुननी चाहिए। इसलिए अपने आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरि कथा को साधन बना लेता है, जिससे वो पापों से मुक्त हो जाता है हरि कथा सुनने से। लेकिन पाप से मुक्त होने के पश्चात वो व्यक्ति तुरंत भक्ति में नहीं लगता,
बल्कि उस ब्रह्मा अवस्था में पहुंचने के बाद वो सोचता है कि वही खुद भगवान हो गया। और इसलिए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनको तरस आता है, सोचते देखो इससे भी बदतर वो है जो कर्म कांडों में लगा हुआ है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग कार्य कर रहा है, अलग अलग तपस्या कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? केवल इस इंद्रियों को तृप्त करना, बस। उससे आगे बढ़कर व्यक्ति जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, लेकिन ज्ञान में भी एक इंद्रिय तृप्ति है जिसमें वो बहुत खतरनाक है, वो है खुद को भगवान मानना, मैं भी भगवान के समान हूं। हाँ, गुणों में आप भगवान के समान है क्योंकि आप भगवान के ही अंश अवतार अंश है, भगवान के अंश होने के कारण भगवान के जितने गुण है उतने अंश मात्र में आप में है, लेकिन आप भगवान नहीं बन सकते। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, जो सतोगुण में स्थित रहते हैं, वे इस अंतर को जानते हैं और इनके लिए भगवत कथा ही जीवन की उपलब्धि है, जीवन का मूल उद्देश्य भगवत कथा ही सुनना है। इसलिए आप देखिए, जब महाराज परीक्षित को शाप मिला तो तुरंत उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसे एक मार्ग को स्वीकारना है जिसके द्वारा मैं अपने जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त कर पाऊं। तो बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उनसे उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा कार्य है जो 7 दिन में करने के पश्चात मैं अपने जीवन की समसिद्धि को प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास केवल 7 दिन बचो है, बहुत ही कम समय है, और इस कम समय में मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, ऐसे कहा है। अब सब लोग कहते हैं उनको कि आपको हरि कथा सुनी होगी, ये हरि कथा है जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति अपने दुखों से और गत जन्म के किए हुए पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा बहुत कठिन। और हरि कथा ही है जो हमें भगवान के प्रति निष्ठा रति आसक्ति और भाव को उत्पन्न करा देती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन की अगर सिद्धता प्राप्त करनी है तो भगवान के नाम गुण लीला इनका श्रवण करो, सुनो कि केवल यही एक इंद्रिय है जो हमें जन्म से लेके मृत्यु तक साथ देता है, बाकी इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, लेकिन ये इंद्रिय है जो हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। तो इसलिए यहां पे उद्धव जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे बताओ प्रामाणिक रूप से कि इन सब अलग अलग वादों में न लगते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के वैचारिक सिद्धांतों को समझने में अपना मन उलझाने से अच्छा भगवान के भक्तों के द्वारा बताई गई कथा का श्रवण करना हमें हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके दे सकता है। तो आइए प्रयास करते हैं कि प्रभुपाद ने इतना सुंदर आयोजन हमारे लिए किया है कि हर प्रातः हम बैठ के श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं, जिसमें भगवान के बारे में सुन सकते हैं, उनके भक्तों के साथ उनका जो आदान प्रदान है उसको हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण।
भगवान इतना चीजें बनाए कि सारे के सारे इतना चीज बनाए थे, मोहित होने में चीज बनाया है, तो भक्त लोग भी फिर मोहित नहीं होने के सोचता है, पर मोहित हो जाता है, कुछ ना कुछ सामान तो लेता है, कुछ ना कुछ तो चाहता है। फिर इतना अच्छा अच्छा मिशनरी भी बना दिया है भगवान, इतना सारी चीज सृष्टि कर दी है, उत्पाद
क्यों किया उन्होंने, खुद के लिए किया
है?
हम लोग प्राणी के लोग के लिए किया,
हाँ, क्योंकि हमारी इच्छा है। और बहुत ही प्रिय पिता होने के कारण भगवान हमारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं, ताकि अगर हम भगवत धाम जाए तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में न सोचें और फिर से यहाँ पे पतन न हो हमारा। अवजानंती, वहां जाके अगर हम भगवान को भूल गए, ना पश्यंती ना भजंती अवजानंती स्थानात् भ्रष्टा पतंती आदा कहा गया, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की भावना जीव में इतनी प्रबल है, चाहे वो भगवत धाम में हो या इधर हो, भगवत धाम में उस इच्छा के ऊपर नियंत्रण पाने की क्षमता उसमें आ जाती है, इसलिए वो वहां पे रहता है। और जब वो क्षमता कम हो जाती है तो फिर से उस इंद्रिय तृप्ति की भावना के कारण उसको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो भगवान इस भौतिक जगत में उस व्यक्ति को इतना सुख वगैरह दे देते हैं उसकी इच्छा के अनुरूप कि उससे वो अभी बस हो जाए। जैसे आपको हर रोज हम अगर रसगुल्ला खिलाएंगे तो 10 दिन के बाद बोलोगे ना कि बस हो गया, अभी नहीं चाहिए रसगुल्ला, बोलोगे ना? नहीं बोलोगे, खाते रहोगे। बोलोगे ना कि अभी बस हो गया, अभी नहीं चाहिए करके। तो वैसे ही भौतिक जगत में भगवान जीव को डाल देते हैं अलग अलग सारे सुख देने के बाद, फिर वो जब देख लेता है तो जैसे प्रहलाद महाराज वो कहते हैं कि खास करके इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख अगर कोई मानते हैं तो वो है स्त्री के साथ संग करना, लेकिन वो बोलते खुजली करने जैसा है, हाथों की खुजली करने जैसा। जितना खुजला होगे उतना खुजली बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी,
खुजली नहीं करना चाहिए।
और वो जितना खुजला होगे उतना आपको ये नहीं देगा,
घाव बन जाए।
तो उसी प्रकार से इस भौतिक सुख सब ऐसे ही है, और जब इनको जान लेता है तो सोचता है कि अभी बहुत हो गया, नहीं चाहिए, और फिर वो भगवान की तरफ मुड़ता है। इतना ही नहीं, आप अच्छी तरह से भक्ति यहाँ पे कर लो, तो भगवान जब आपको भगवत धाम लेके जाने वाले रहते हैं तो सारे लोगों में आपको घुमाते, कहीं का सुख देख के अगर विचलित हो गए तो बोलते वही रुक, भोग ले उसे, फिर आगे प्रगति नहीं होती। अगर आगे बढ़ना है तो इन सुखों के लिए अनासक्ति निर्माण करना, और वो अनासक्ति तभी निर्माण हो सकती है जब भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान ने बनाया वो हमें बांध के रखने के लिए नहीं बनाया, बल्कि हमें हमारे प्रवृत्ति जो है भोग प्रवृत्ति है उससे निवृत्त करने के लिए बनाया, यह हमें समझना।
भक्त लोग को मतलब भगवत कथा में लगने के बाद उतना आसक्ति तो नहीं बढ़ेगा ना उस तरह?
हाँ, नहीं बढ़ेगा। कथा सुनने से हृदय साफ हो जाता है, और साफ हृदय में फिर इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं रहती ना, वही हमें बचा सकती है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की।